हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाल लीलामृत प्रकरण संख्या 51, हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें। पहले पंडाल व्याख्यान के बाद दूसरे दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद कार्तिकेय महादेविया तमाल कृष्ण गोस्वामी और भवानंद गोस्वामी के साथ बैठे थे। मायापुर में प्रभुपाद के स्वास्थ्य के अत्यंत कमजोर हो जाने के बाद वे प्रायः घंटों अकेले और मौन बैठे रहते। जब कभी वे बोलते थे तो उनकी आवाज़ प्रायः फटी हुई या बहुत कमजोर होती थी, किंतु अन्यथा उनका वार्तालाप सदैव की भांति होता था, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित। बहुत बढ़िया बात निकल के आ रही है यहाँ से कि स्वास्थ्य के अत्यंत कमजोर हो जाने के बाद से वे प्रायः घंटों अकेले और मौन बैठे रहते थे। पहली बात, इज अ ओल्ड एज इफेक्ट। जब व्यक्ति की आयु ज़्यादा हो जाती है तो आवाज़ ढीली पड़ जाती है, परंतु उनका वार्तालाप सदैव की भांति ही होता था, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित। अगर आपने महाभारत पढ़ी हो तो उसमें उल्लेख आता है कि भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे आ गए थे और उत्तरायण का इंतज़ार कर रहे थे तो बहुत सारा खून उनके शरीर से रिस रहा था, बोलने में असमर्थ थे। भगवान कृष्ण को अपने भक्तों की कीर्ति बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। भक्तों का यश हो, भक्तों का सम्मान हो, भक्तों की कीर्ति हो, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। अब भीष्म पितामह महाजन हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और एक सबसे बड़ी बात जो पांडवों के जीवन में थी कि जितने भी चंद्रवंशी हैं वो अपने पुरखों की बात का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, उनको पूरा मान और सम्मान देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके कहे के अनुसार चले। भगवान कृष्ण ये बात जानते हैं। उनका इच्छा क्या है कि मैं ये पांडव जो इस वक्त कह रहे हैं कि युद्ध जीतने के बाद हम राज्य नहीं करेंगे, बहुत हत्याएं हो गई हैं, राज्य नहीं करेंगे, राज्य करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इनको जो है भीष्म जी से कुछ व्याख्यान दिलवाया जाए, उपदेश दिलवाया जाए और कुछ आदेश दिलवाया जाए। अब प्रश्न यह है कि भीष्म तो बोलने में असमर्थ हैं, बहुत हल्की हल्की आवाज़ निकल रही है, तेज़ आवाज़ नहीं है, तो सुनेगा कैसे, बोलेंगे कैसे, और फिर एक उपदेश नहीं देना है, राजधर्म क्या है, राजनीति क्या है, स्त्री धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, पति धर्म क्या है, पति धर्म, बहुत सारे धर्मों की व्याख्या होनी है जिससे कि पांडवों का मन जो विचलित हो रहा है वो विचलित ना हो। तो जैसे ही भगवान उनके समक्ष पहुंचते हैं, दृष्टि उन पर केंद्रित करते हैं, तो अपने योग बल से जो है भीष्म अपनी नेचुरल आवाज़ में बोलना शुरू कर देते हैं। नेचुरल, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो आवाज़ निकल नहीं रही थी, जो आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, जब वो बोलने में असमर्थ थे तो कैसे बोले, जब भगवान की कृपा हो गई। यही बात यहाँ है। देखिए, भगवान के शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, और लिखा क्या है, उनका वार्तालाप सदैव की भांति होता था, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित। जब कृष्ण की बात आती थी तो शक्ति आ जाती थी। दूसरी बातों में, संसारिक बातों में आवाज़ नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं, फटी हुई आवाज़ है, शक्ति नहीं है, परंतु भगवान को अपने भक्तों की कीर्ति अत्यंत प्रिय है। जब वो कृष्ण के बारे में बात करना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो आवाज़ में पूरा दम और खम आ जाता है। अब कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। यही बात हमने आज की तारीख में प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखी है। मैं गुरु महाराज की बात करता हूँ। आपने देखा होगा कितने लोग गुरु महाराज के साथ बैठे हैं या मिले हैं, हाथ खड़ा करें जरा, क्या उनकी आवाज़ समझ में आती है? इतना धीमा बोलते हैं कि कई बार बिल्कुल कान पास ले जाके सुनना पड़ता है। परंतु जब कृष्ण की बात करते हैं यहाँ बैठ के, तो आवाज़ धीमी होती है या बुलंद होती है? कैसी होती है? धीमी होती है क्या? हल्की आवाज होती है? बुलंद आवाज है, एकदम बुलंद आवाज। मैंने राधा गोविंद महाराज को देखा है, उनके कमरे में उनके साथ बैठा हूँ, हल्की हल्की आवाज में बात करते हैं। परंतु जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं, जब कथा कर रहे होते हैं, इतनी बीमारी के बावजूद भी, तो आवाज़ में बुलंदी आ जाती है। यस, इट इज़ पावरफुल। तो कृष्ण को अपने भक्तों की कीर्ति बहुत पसंद है। कृष्ण जो है अपने भक्तों के अंदर शक्ति भर देते हैं, जिससे कि वो कृष्ण के नाम की, रूप की, गुण की, लीला की, धाम की चर्चा बुलंद आवाज में कर सके। और यही बात यहाँ आ रही इस पैराग्राफ से कि उनका वार्तालाप सदैव की भांति ही होता था, पूर्णतया कृष्ण भावना भावे। आगे लिखते हैं, वास्तव में श्री प्रभुपाद उन मूढ़ों की अपनी असमझौतावादी आलोचना में अधिकाधिक दृढ़ होते जा रहे थे, जो कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। वे भौतिकतावादी सभ्यता की निंदा करते थे और उनके कुकुर सभ्यता या बांबी सभ्यता कहते थे। एक कुत्ता अपने चारों पैरों से भागता है, मनुष्य भी चार पहियों पर दौड़ लगा है, किंतु यदि जीवन का अर्थ नहीं समझता तो कुत्ते से बेहतर नहीं है। तो हम जब प्रचार करते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ दी पर्पस ऑफ लाइफ। यहाँ जो इसके अंदर यही आ रही है, यदि वह जीवन का अर्थ नहीं समझता, अर्थात पर्पस ऑफ लाइफ नहीं समझता है, तो कुत्ते से बेहतर नहीं है। यहाँ प्रभुपाद ने चर्चा कर दी कि एक वो मनुष्य जो है चार पहियों की गाड़ी में भागता है और कुत्ता अपने चार पैरों से भागता है, परंतु दोनों को जीवन के यथार्थ का अनुभव नहीं है, दोनों को जीवन के पर्पस का, जीवन के उद्देश्य का ज्ञान नहीं। मनुष्य और चींटियां लंबी लंबी संरचनाएं करते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य आत्मा कृष्ण के विषय में नहीं जानता, तो उसके गगनचुंबी महलों के बावजूद उसकी सभ्यता एक शानदार बाल्मीक से अधिक नहीं। जो बांबी है, बांबी जिसमें कि दीमक चलती है, उसको बाल्मीक कहते हैं। जो महर्षि वाल्मीकि का नाम आया, उसी तपस्या के दौरान उनके शरीर पे दीमक ने बांबियाँ बना ली थी, ढक गए थे दीमक से, इसलिए उनको वाल्मीकि कहा गया। वाल्मीकि उनका नाम पहले नहीं था, ये बाद में नाम पड़ा। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण के और आत्मा के विषय में नहीं जानता, बेसिक डिफ्रेंशिएशन चाहिए, मूलभूत बात है कि क्या मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ या मैं दोनों हूँ, कि आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ, ये ज्ञान होना चाहिए। जब ये ज्ञान है तो फिर ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान का नाम क्या है, और मुझे उस संबंध को कैसे निभाना है, ये आत्म साक्षात्कार। प्रभुपाद ने कहा, यदि अधिक श्रोता आए तो मैं इस वाल्मीकि सभ्यता का पूरा वर्णन करूँगा। स्वास्थ्य कैसा स्वास्थ्य, सब व्यर्थ की बात है। उस आदमी को धक्के देकर संसार से निकाल दिया जाएगा। श्री प्रभुपाद का संकेत उस व्यक्ति की ओर था जिसने पंडाल में स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछा था। बड़े पर्टिकुलर है प्रभुपाद, जब कृष्ण की चर्चा हो रही है तो स्वास्थ्य की बात बीच में कहाँ से आ गई? आपका कंसंट्रेशन कितना है, आपका मन भगवान में है कि नहीं है, आप कथा सुनने आए हैं या कुछ और करने आए हैं? एक छोटा सा उदाहरण है, गंगा किनारे पंखे लगे क्या, कूलर, एसी, नेचुरल एसी है, ठंडी हवा चलती है। कथा चल रही थी, भक्तगण बैठे थे, श्रोता बड़े ध्यान से सुन रहे थे, एकदम मगन होके वक्ता भी बड़ी लय में बोला चला जा रहा था, सबको आनंद आ रहा था। सडनली थोड़ी सी हवा आनी शुरू हो गई जो पहले थमी हुई थी, पहले चल नहीं रही थी। तो एक श्रोता जो है दूसरे से कहता है, कितना मजा आया है, कितनी ठंडी हवा चलनी चालू हो गई है, ठंडी हवा का आनंद आ गया। तो जो जिससे कही गई थी बात उसने उसको डांट दिया, तू यह कथा सुनने आया है कि ठंडी हवा खाने आया है, बता क्या चाहता है, कथा सुनने आया है तो चुपचाप कथा सुन, ठंडी हवा की बात मत कर। दिस शोज कि हमारा कंसंट्रेशन कितना है, हम कथा में बैठ के भी संसार को नहीं भूल पाते, दिस इज अवर प्रॉब्लम। हमारे मन के अंदर जो है संसार फिर भी चलता रहता है, कथा नहीं चलती है। जिस दिन ये बात बदल जाएगी, हमारा मन कथा में लिप्त हो जाएगा, लीन हो जाएगा, उस दिन आपको अपने जीवन में एक बदलाव महसूस होगा, चेंज महसूस होगा। तो वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि उस आदमी को धक्के देकर संसार से निकाल दिया जाएगा। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, और लंबी बीमारी हो जाती है, तो घर वाले भी धक्का देना चाहते हैं, दुखी हो जाते हैं, लटका हुआ है, 3 साल से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, जान भी नहीं निकलती है, सबको दुखी कर रखा है, सारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, छुटकारा मिले, बेसिकली अपना छुटकारा चाहते हैं, छुटकारा अपना चाहते हैं। पर बात क्या कहते हैं, ये बहुत दुखी है, इसको छुटकारा मिलना चाहिए, इसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसको जो है कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। उसको कष्टों से छुटकारा नहीं चाहते, तो जो भोग रहा भोगेगा बेचारा, कष्टों से छुटकारा स्वयं अपना चाहते हैं कि मुझे कष्टों से छुट्टी मिल जाए, जो हमें इतना भागदौड़ करनी पड़ रही है, सेवा करनी पड़ रही है, उससे छुटकारा मिल जाए। तो प्रभुपाद ने पूछा, यदि वो मरने जा रहा है तो वे स्वस्थ कैसे हैं? मैं इतना स्वस्थ हूँ कि कल मरने जा रहा हूँ, यही है उनका स्वास्थ्य। मैं इतना स्वस्थ हूँ कि कल मरने जा रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया, सभा बैठी हुई है, सभा बैठी हुई है, और उस सभा के अंदर जो है चर्चा चल रही है, तो भीम ने आके कुछ संदेश दिया। क्या संदेश दिया? एक याचक आया है, बाहर एक याचक आया है, उसकी बात सुन ली जाए, फिर हम सब आगे बढ़ाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, याचक से कहो कि हम उसकी बात कल सुनेंगे, टुमोरो। तो भीम ने जो है करतल ध्वनि कर दी, करताल बजा दी, नगाड़े बजवा दिए, बोले सब सभा डिस्टर्ब हो गई। तो कृष्ण बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा, भीम क्या बात है, तुम इतने प्रसन्न कैसे हो, नगाड़े बजवा रहे हो, करताल बजा रहे हो, है इतने प्रसन्न कैसे हो? कहते, भगवान मैं आज इसलिए प्रसन्न हूँ कि मेरे भाई ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। बोला कैसे? उन्हें याचक से कहा है कि कल तुम्हारी बात सुनूंगा, इसका मतलब है कल तक जिएंगे, मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है, इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मैं इतना स्वस्थ हूँ कि कल मरने जा रहा हूँ, यही है उनका स्वास्थ्य। भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों की कथाएं सुनेंगे तो उनको मालूम रहता है कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है, दे नो इट, वो पहले से अनाउंस कर देते हैं, योग दृष्टि से उनको मालूम होता है कि मैं कब मरने वाला हूँ, कब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो पहले से बता देते हैं कि मेरी मृत्यु इस दिन एक क्षण इस पल हो, उसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, वास्तविकता बयान नहीं कर रहे हैं। यदि कोई मरने जा रहा है तो वह स्वस्थ कैसे है? ये लाइन इम्पोर्टेंट है। भाई मरता तो बीमार आदमी है, सही आदमी, इसका मतलब है कि बीमार नहीं है तभी तो मरेगा। तो अगर मैं कहूँ कि मैं मरने वाला हूँ 10 साल के बाद, इसका मतलब है 10 साल मेरी बीमारी अभी और चलेगी, दस साल मेरा स्वास्थ्य खराब रहेगा और खराब रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो मुझे मृत्यु को प्राप्त करना ही है। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, लगभग सभी प्रश्न शरीर से संबंधित थे। प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है, शरीर के नष्ट होने पर भी आप न मरे, यही स्वस्थ जीवन है। स्वस्थ जीवन क्या है? शरीर नष्ट हो जाता है और उसके साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। वस्तुतः हर वस्तु नष्ट नहीं होती, किंतु इस संबंध में लोग अज्ञान रखे जाते हैं। वे सोचते हैं कि देह के साथ हर वस्तु नष्ट हो जाती है, किंतु ये सत्य नहीं है। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है, भगवद गीता 2.20, ना जायते मृते व कदाचन। यदि आप प्रश्न नहीं पूछते तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये कैसे संभव है कि शरीर का अंत हो जाता है और आत्मा का अंत कभी नहीं होता। हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, देहांत इस्तेमाल करते हैं, आत्मांत इस्तेमाल नहीं करते कि आत्मा का अंत हो गया। देहांत अर्थात देह का अंत हो गया। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के बावजूद हर व्यक्ति को मरना है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य कहाँ है? इस तरह की मुख्यता भरी बातें सारे संसार में चल रही हैं, अतः संगठित हो जाओ और वास्तव का उन पर प्रकट करो कि उसका प्रसार करो क्रमशः किंतु निश्चयात्मक रूप से। शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्रमशः। क्रमशः का अर्थ क्या है? स्लोली एंड ग्रेजुअली। देखिए, एक व्यक्ति बीमार है, बीमारी से इम्प्रूव कर रहा है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं अच्छा अच्छा ये बीमारी चल रही थी, कोई बात नहीं, आज इसे ना आप सिर्फ दूध पिलाइएगा, दो दिन के बाद उसमें बिस्किट ऐड कर देगा, खिचड़ी ऐड कर देगा, फिर चावल दाल ऐड कर देगा, फिर चार पाँच दिन के बाद खाना ऐड करेगा। बीमार है, हम सब बीमार हैं, हम सब बीमार हैं, और पहले दिन फीस्ट हो जाए, मतलब हर चीज़ बता दी जाए, ये बता वो बता ये बता वो बता। मुझे अच्छे तरीके से याद है, हम जब नए नए प्रचार करना सीखे थे तो अंजनों ने हमको प्रचार करना सिखाया, उन्होंने यही बात सिखाई थी जो यहाँ पर वो बात लिख रहे, क्रमशः। यार गोली मत मार दियो, गोली मत मार दियो आते ही। अच्छा अच्छा आप अंदर आ गए हैं, देखिए भगवान हैं, इनके दर्शन करिए, ये राधिका रमन जी हैं, राधा राधिका रमन हैं, ये कृष्ण बलराम हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, गौर नेताई हैं। अच्छा जी देखिए ऐसा है कि आज से आप 16 माला जप चालू कर दो, ठीक, मांस अंडा मुर्गा मछली छोड़ दो, ठीक, प्याज लहसुन चाय सिरका छोड़ दो, ठीक, सिगरेट पान तम्बाकू छोड़ दो, ठीक, सारे के सारे नियम, सारे के सारे कायदे कानून पहले दिन ही उसके दिमाग में भर दिए। वो कहता है, आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, अब मेरे को वमन हो रहा है, उल्टी आ रही है, जब मैं इस ज्ञान को पचा लूँगा, समझ जाऊँगा, तब मंदिर आऊँगा, आज के बाद मंदिर नहीं आऊँगा। ये बातें मेरे अंदर चली गई हैं तो मुझे मंदिर से बाहर कर रही हैं। तो हम लोग क्या फार्मूला अपनाते हैं? अरे भैया, हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला से चालू करो, एक माला, सुबह ना करके जब मर्जी आए तब कर लो। शुरुआत तो करे, बिगनिंग तो करे, आरंभ तो करे। मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक मैसेज आया था इंटरनेट पे मेरे पास, कोल्हापुर एक जगह है महाराष्ट्र में, सुना है नाम किसी ने? कोल्हापुर टेम्पल है अपना वहाँ पर छोटा सा, कोल्हापुर जगह है, जब आप पूना से बेलगाम जाते हो तो रास्ते में पड़ती है। एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति, हैंडीकैप्ड है, वो बस में चलता है और उसे बस में कंसेशन मिलता है, छूट मिलती है, तो उसने सोचा कि मैं इतना सक्षम हूँ कि मुझे कंसेशन की आवश्यकता नहीं है, पर मैं ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँ। उसने बैक टू गॉड हेड भगवत दर्शन हिंदी में लिया और उसको जो है बस में एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए दे दिया। आधे पौने घंटे का रास्ता है, उस व्यक्ति ने दो चार पन्ने पढ़े उसके बाद वापस कर दी। पड़ोसी जो व्यक्ति बैठा था उसने झांक के देखना शुरू किया कि ये क्या पढ़ रहा है, इंटरेस्ट बन गया ना, भगवान की फोटो बनी हुई है, कृष्ण के बड़े सुंदर छवियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, और प्लस लिखा भी है तो पढ़ नहीं पा रहा है, पर एक व्यक्ति पढ़ रहा है, उसको देख रहा है पढ़ते हुए। तो इसने अगले दिन दो भगवत दर्शन ले आया। करते करते इसने अपना जो है जितना पैसा है इसको बचता था वो सब की भगवत दर्शन खरीदी और अल्टीमेटली बस में डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। अब लोगों ने पढ़ी, किसी ने एक पन्ना पढ़ा, किसी ने दो पढ़े, किसी ने चार पढ़े, किसी ने छः पढ़े, होले चलते 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 इसने कहा देखिए अब थोड़ा सा इसने दो मिनट के लिए भगवान के बारे में चर्चा कर दी। मुस्लिम भी बैठे थे, सुन रहे हैं परंतु उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा करते रहो, कल हम भी क्योंकि लोगों ने कहा भाई तुम भी कल करना चाहो तुम भी कुरान ले आना, तुम भी पढ़ लेना, हमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ा है। मेजॉरिटी हिंदूज की थी, सुनते रहे। अब उसने वहाँ पर जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरू कर दिया। इट टुक 2-3 मंथ्स, 2-3 महीने का समय लगा। कीर्तन शुरू हो गया और फिर करताल ले आया, थोड़ा रिदम बन गई, रिदम हो गई, फिर आनंद आना शुरू हो गया। अब वो जो बस है उसका नाम रख दिया लोगों ने हरे कृष्णा बस, कि सुबह वो 8 बजे चलती है कोल्हापुर से और 9 बजे मिराज पहुंचती है, तो उसका नाम रख दिया हरे कृष्णा बस। तो जो फिर उसने प्रसाद लाना शुरू कर दिया, थोड़ा 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 प्रसाद सबको इतना इतना प्रसाद सबको बांटना शुरू कर दिया। तो जहाँ बस स्टॉप पे बस पहुँचती थी वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया भगवत दर्शन का और प्रसाद का, और वहाँ भी बैठ के उन्होंने एक माला जप करा देनी, कथा कर देनी। वो एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति मन में भाव आया कि मुझे प्रचार करना चाहिए। ग्रेजुअली इन अबाउट 6 मंथ्स टाइम उसने सारे वातावरण को वहाँ पे कृष्णमय बना दिया। हमारा एक बस नहीं, 4-5 बसें हरे कृष्णा बस हो गई, एक ब्रांड बन गया। वो ब्रांड ग्रेजुअल क्रमशः, एक दिन में नहीं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि जब उसका प्रचार चल रहा था तो लोगों ने कहा कि आप जो हमें किताब देते हो और वापस ले लेते हो, क्या हम इस किताब को ले नहीं सकते? येरा मेंबरशिप फॉर्म भरो भरो, 120 रुपये में आपको सारे साल आएगी, 12 इशू आएंगे, भरिए आप। तो उस फॉर्म को भरने के लिए उस लाइन के अंदर मुस्लिम भी थे जो बस में बैठे बैठे उनको लगा कि कोई भी चीज़ हमारे खिलाफ नहीं जा रही है, एक अच्छी चर्चा हो रही है, अच्छी चीज पढ़ने को मिल रही है। दे ऑल्सो बिकेम लाइफ मेंबर्स, दे परचेस्ड। सो इट वॉज ए वेरी एनकरेजिंग मैसेज। ये मैसेज इम्बाइब करना चाहिए। और यहां जो है बड़ी स्पष्ट बात लिखी हुई है कि क्रमशः किंतु निश्चयात्मक रूप से डेफिनेटली करना है, करना है, करना है, पर करना कैसे है? ग्रेजुअल प्रोसेस के रूप में। फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा तो लोकप्रिय बनने के लिए हम अधीर बनकर समझौता नहीं करना चाहिए। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, अधीर मीन्स सारे काम आज ही हो जाए, कौन कल तक वेट करेगा, आज ही कर दूं बस, ये मुर्गा फंस गया है इसको काट लो। नहीं, हौले 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 हौले। मैं जानता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, तंबाकू खाते थे, पान मसाला लेते थे, उन्होंने ग्रेजुअली छोड़ दिए। ग्रेजुअली मैं 6 सिगरेट पीता हूँ, चाहे अभी 4 कर दे, कुछ दिनों के बाद 2 कर दे, फिर 1 कर दे। अब 1 में क्या मजा आता होगा, बंद ही कर दे। 1 में तो मजा आता नहीं होगा, सारा दिन ललक लगी होती, जब सारा दिन तलब लगी हुई है तो 1 भी बंद कर दे। लोगों ने छोड़ी, शराब छोड़ी है, सिगरेट छोड़ी है, बहुत सारे भक्त हैं। अब देखिए जितने भी यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, सारे तो सब मांस मद्दा सब उनके लिए तो कॉमन चीज़ है ना, पर सब छोड़ के सन्यासी बने हुए हैं, कितना बड़ा त्याग किया होगा। आज भी मैं ये भक्ति भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें कि पेट में एसिडिटी बनती है। एज ए डॉक्टर जब मैं पेशेंट से कहता हूँ भाई तेरे को चाय छोड़नी पड़ेगी, हाय हाय की कहता डॉक्टर साहब, चाय तो छूटती नहीं। घर में कोई आ जाए तो चाय पिलाओ, किसी के यहाँ जाए तो चाय पिलाओ। मैंने कहा उनसे कहा करो मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दे। कहते हमने कहा, वो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक तो स्टार्टर है, असली काम तो चाय का है। चाय नहीं पिलाई तो आपकी खातिर नहीं हुई, चाय नहीं पिलाई है तो खातिर नहीं हुई। मीन्स खातिर करने के लिए जो आए उसको भी चाय पिलाओ, जिसके घर जाए वहाँ चाय पी के आओ। ये पेशेंट्स कहते हैं, मरीज मेरे कहते हैं कि छूटती नहीं। तो यहाँ तो भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही नहीं छूटेगी, बट फिर भी छूट जाती है, फिर भी सबने छोड़ी है। सब आज जो है चाय लेस जीवन बिता रहे हैं, नोटी। तो यहाँ पे जरूरी है कि हमें अपने आप को पॉपुलर करने के लिए अधीर नहीं बनना, जोश में नहीं काम करना, मतलब जोश में होश नहीं खोना है। इसीलिए क्रमशः शब्द इस्तेमाल हुआ है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। हम कहते हैं आई एम प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर मैंने भगवे कपड़े पहन लिए हैं, माला जपनी शुरू कर दी है, कृष्ण प्रसाद खाना शुरू कर दिया है, हारमोनियम सीख लिया है, और मैं कीर्तन करना शुरू कर दिया, भगवान की सेवा शुरू कर दी, मैं कृष्णा कॉन्शियस हो गया? नहीं, भी मैंने उस मार्ग में कदम रखा है। नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जैसे सिद्ध कहते हैं वो क्या होगा? अभी हम साधक हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिद्ध कौन है? एक बेसिक डिफरेंस है सिद्ध में और साधक में। साधक मीन्स कि अभी उसकी मटेरियल डिजायर्स जो है खत्म नहीं हुई। सिद्ध मीन्स उसकी मटेरियल डिजायर्स भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, अब केवल कृष्ण सेवा की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। उस सेवा के लिए जो असेंशियल्स हैं उनको फॉलो करता है, वो उसको फॉलो करता है। भगवान की सेवा करनी, अगरबत्ती जलानी, भाई पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा कमाता है उसके लिए, पर क्लब जाने के लिए नहीं कमाता, फिल्म जाने के लिए नहीं कमाता, एंजॉय करने के लिए नहीं कमाता। किसके लिए कमाता है? कि मेरा धन जो है जो भगवान की सेवा में प्रयुक्त हो जाए। मुझे खाना खाना है, यस खाना खाऊंगा, पर कैसा खाना खाऊंगा? भोग लगा के प्रसाद खाऊंगा, उसके लिए मैं कमाऊंगा। मैं इसलिए नहीं कमाऊंगा कि मुझे पैसा कमा के मुझे माल्टा घूमने जा रहा हूं मैं। क्या है माल्टा में भाई? कुछ नहीं, समुद्र है, क्या जरूरत है वहां घूमने की? भैया मंदिर में भगवान की कृपा का समुद्र है, उसको छोड़ के तुम माल्टा के समुद्र में घूमने जा रहे हो? भगवान की कृपा का समुद्र, भगवान के आशीर्वाद का समुद्र, भगवान के दर्शनों का समुद्र, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि माल्टा का समुद्र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट? कितना बिल आया जी? वो 1.5 लाख रुपया पर पर्सन था, हम 4 लोग गए थे, 6 लाख लगा, 3-4 लाख की शॉपिंग कराए, 10-11 लाख खर्च कराए, 10 लाख भैया मंदिर में देता, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम होते, बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता, और बढ़िया बढ़िया भगवान के दर्शन होते, इतने इतने सुंदर वस्त्र बनते, भगवान की अथाह कृपा रहती। परंतु हम लोग जो है अधीर हैं। अब श्रील प्रभुपाद बोले कि अधीर होने का कोई प्रश्न नहीं है, आपके पास एक हीरा है, यदि उसका कोई खरीदार नहीं है तो इसका तात्पर्य नहीं है कि आप उसे फेंक दें। हीरा क्या है? कृष्ण भावनामृत का ज्ञान, हीरे के समान है, आपने फेंकना नहीं है। आपको जानना चाहिए कि यदि एक हीरा है और मैं इसे चाहता, इसका कुछ मूल्य चुकाना होगा, मैं इसे ही स्थापित करना चाहता हूँ, भारत की संस्कृति को इस तरह से नष्ट क्यों होने दिया जाए? मैं कोई सस्ता देशभक्त नहीं हूँ, मैं भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व को देना चाहता हूँ, मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा और हाथ में भगवद्गीता लेकर व्यर्थ की बातें करूँ, मैं भगवद्गीता को यथारूप प्रस्तुत करना चाहता हूँ, यही मेरा मिशन है, मैं किसी को धोखा क्यों दूँ? अब रिश्तेदारी में जाते हैं ना, तो आप कहते हैं यार मेरे पास 2-3 आइटम गिफ्ट की रखी हुई हैं, वो मैं अच्छा ये वाली दूँ या ये वाली दूँ या ये वाली दूँ? आपके पास एक कन्फ्यूजन है कि आप कौन सी आइटम गिफ्ट करेंगे उस परिवार को, उस व्यक्ति को। फिर आप वजन करते हैं, यार इससे रिलेशन इतना डीप है, इससे रिलेशन इतना डीप है, इससे रिलेशन इतना डीप है, अच्छा इससे बड़ा गहरा रिलेशन है, जब सबसे महंगी वस्तु उसको दे देता हूँ, जिससे बहुत कम रिलेशनशिप है, दूरी का रिश्ता, उसको सबसे बढ़िया वस्तु नहीं देंगे, उसको काम चलाओ काम कर देंगे। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपके पास हीरा है, इसको फेंकना नहीं है, उचित व्यक्ति को देखकर जो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, जो जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं, ये फंस गया क्योंकि इसने एक सवाल कर दिया है, वो सवाल नहीं करता बैठा रहता, अब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको टाला जाए, इसको भगाया जाए यहाँ से, कोई फायदा नहीं इससे बात करने का, इसमें इंटरेस्ट है, इसने सवाल किया है, बड़ी जिज्ञासा पूर्ण निगाहों से देख रहा है, तो ये व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में सक्षम है, इसको वो हीरा दिया जाए, इसको वो ज्ञान दिया जाए। हम भी प्रचार के दौरान देखते हैं कुछ लोग सिर्फ प्रसाद खाने के लिए आते हैं, उन्हें कथा में इंटरेस्ट नहीं होता, वो वेट करते हैं, घड़ी देखते हैं बार बार, कथा कब खत्म हो रही है, अच्छा 9 बजे प्रसाद मिलेगा, देखते रहते। अभी मौका मिला तो मैं आपको चर्चा करूंगा श्रोता की, कि 8 प्रकार के श्रोता हैं 8 प्रकार के, 4 प्रवर और 4 अवर, उसमें कैटेगराइज किया हुआ है कि श्रोता की क्वालिटी क्या है, किस तरह के श्रोता हैं। तो यहाँ पे चर्चा आ रही है कि आपको अगर हीरा देना है कृष्ण भावनामृत का, तो देखना होगा कि आपको किसको देना है, किस व्यक्ति को देना है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मुझे कथा के लिए इनवाइट किया गया, जी वो बच्चे का जन्मदिन है जी, आप आके कथा कर दीजिए। मंदिर से फोन आया था, हम चले गए, चलो भैया तो मंदिर का आदेश है तो जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाके क्या देखा कि एक भी व्यक्ति कथा सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। गोलगप्पे किधर है, चाट पापड़ी किधर है, भल्ले टिक्की किधर है, फलानी चीज किधर, वो सब व्यक्ति खा रहे हैं और मैं वहाँ बोल रहा हूँ, 2 आदमी बैठे हुए हैं, घर वाले 2 बैठे हुए हैं और बाकी सब कोई नहीं सुन रहा, खाते पीते आपस में बातें चल रही हैं, हम अपना आधा घंटा बोल बाल के वहाँ से भगवान की कथा है 2 लोगों को सुना के चले आए। परंतु भाव ये आया कि ऐसे प्रोग्राम के अंदर जाने का कोई लाभ हुआ नहीं, हमने वो हीरा जो है व्यर्थ इस्तेमाल किया है। 10-15-25-50 लोग बैठे होते, कथा सुनने के बाद खाना ओपन होता, कथा सुनने के बाद भल्ले चाट पापड़ी ओपन होती, फिर तो बात समझ में आती, वो पहले ओपन हुई कथा बाद में शुरू हुई तो कौन आएगा कौन आएगा, कोई नहीं आया। आप अपना देखते रहे कि 2 से 3 हो जाए, भैया कोई तो आके बैठे, कोई तो सुने, चलो बैठता नहीं है तो खड़ा होकर ही सुन ले, भाई उसने टिक्की ले ली और सामने आके खड़ा हो गया कि मैं टिक्की खाऊंगा पर मैं सुन रहा हूं, अरे सुनने को तैयार नहीं, इंटरेस्ट किस में है, खाने में। पर अच्छी बात थी, एक जो सबसे बढ़िया बात थी वो थी कि कम से कम उन्हें कृष्ण प्रसाद तो मिला, घर वालों ने प्रत्येक वस्तु का भोग लगाया हुआ था, प्याज लहसुन के बगैर थी क्योंकि भगवान के चर्चा होनी थी, तो उन्होंने सब चीजें जो है वो बनाई थी, भगवान को भोग लगाया था, तो सबको कम से कम कृष्ण प्रसाद मिला। ऐसा नहीं है कि सबने जो है तामसिक खाना खाया हो, परंतु कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो हीरा किसको देना है, कृष्ण भावनामृत रूपी हीरा किसको देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये बात इम्पॉर्टेंट। एक दूसरी जगह क्या, विकासपुरी में हमारे बड़े मंदिर के भक्त हैं, उनको अरेंज किया था, स्ट्रिक्ट 8:30 हमने लेक्चर शुरू किया, 9:15 ख़त्म किया, उसके बाद उन्होंने आपस में कुछ चर्चाएं जो करनी अनाउंसमेंट्स करनी थी करी और 9:30 उन्होंने जो है प्रसाद को ओपन किया। वहाँ पे 350-400 लोग कथा में बैठे रहे, उनको पता था खाने को तो मिल नहीं रहा, अब मजबूरी है क्या करें, फंसे हुए हैं ना, आ तो गए हैं, जा सकते नहीं, साथ मिल नहीं रहा है, तो चलो भैया कथा ही सुन लेते हैं। तो इतनी बड़ी कथा में 350-400 की गैदरिंग में 4-5 लोग तो ऐसे हैं जो कि जुड़ गए होंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग पे चल पड़े होंगे। मैं 400 की बात नहीं कर रहा, 300 की बात नहीं, मैं 4-5 की बात कर रहा, जिनको जिन पे इफेक्ट आया होगा, जिन पे असर आया होगा। तो यहाँ जो है श्रीमन महादेविया ने कहा, हम आपके संदेश को समुचित रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। शिल्प उपाध ने कहा, भारत की महान संस्कृति का इन धूर्त नेताओं के कारण विनाश क्यों होने दिया जाए, उन्हें रोकना चाहिए। कृष्ण भावनामृत सर्वग्राही है, सब लोग स्वीकार कर सकते हैं। जैसे आर्थिक प्रश्न, अन्नाद भवति भूतानि, कृष्ण कहते हैं अन्न उपजाओ, यह व्यवहारिक है। किंतु जब मैं यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा कि लाखों क्लर्क शिक्षा पाने के लिए आ रहे हैं, और कौन उपजा रहा है। तब इन क्लर्कों को इन कबूतर खानों में अन्न देना पड़ता है, उन्हें राशन पर निर्भर होना पड़ता है। क्या यही सभ्यता है? झुंड के झुंड लोग आ रहे हैं, चींटियों की तरह चले आ रहे हैं, और जब आप गांवों में जाएं तो खाली मिलते हैं। खाद्यान्न उपजाने में किसी की रुचि नहीं है, हर एक की रुचि नगर में कबूतर खानों जैसे घरों में रहने, सिनेमा देखने, वैश्यालयों में जाने, रबों में जाने, मदरा पीना सीखने और भद्र पुरुष बनने में। जीवन का सत्य बखान कर दिया प्रभुपाद ने, जीवन का सत्य बखान कर दिया। एक थोड़ा लाइट मोमेंट्स में एक छोटा सा चुटकुला याद आ रहा है। व्यक्ति दिल्ली में आया घूमने के लिए, वापस गांव गया तो दिल्ली की बहुत तारीफ करी, बहुत तारीफ करी, ऐसा है ऐसा है, लाल किला, कुतुब मीनार, पार्लियामेंट, खूब तारीफ करी। तो गांव में जो है 10-12 युवक दिल्ली आने के लिए तैयार हो गए। कहता कोई फ़ायदा नहीं जाने का। बोले क्यों, दिल्ली खाली हो गई। बोले कैसे? कहता सुबह से लेकर रात तक लोग बसों में भर के, टैक्सियों में भर के, गाड़ियों में भर के, रेलगाड़ी मेट्रो में भाग रहे हैं, दिल्ली तो खाली हो गई होगी, कौन रहा होगा दिल्ली में, जाने का कोई फ़ायदा नहीं। यही बात यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग चींटियों की तरह चले आ रहे हैं, शहर के अंदर चींटियों की तरह चले आ रहे हैं। मतलब प्रसाद ये कहा है कि गांव में रहने का कोई व्यक्ति तैयार नहीं, खाली पड़े हुए। क्या यही सभ्यता है? मानव जीवन का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। आप नहीं जानते कि आप कार्यालय क्यों जाते हैं, खाना क्यों खाते हैं। लोग पशु मानसिकता के लिए मानवता दिखा रहे हैं, कुत्तों की मानसिकता। विश्वविद्यालय शिक्षा कुत्ता मानसिकता है, कुत्ता पूंछ लाने लगता है जो ही आप उसे कुछ खाना देते हो। श्रीमान महादेवी ने कहा, हाँ हाँ, किसी पद के लिए आवेदन पत्र मांगे तो 5 पदों के लिए 5 दर्जन आवेदन करते हैं, या 5 पदों के लिए 50,000 आवेदन आते हैं आज की तारीख में। एक पद के लिए 2.75 लाख आवेदन आया था। अभी डॉक्टर की पोस्ट थी दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट में एक डॉक्टर की पोस्ट के लिए 2.75 लाख एप्लीकेशन थे। इमेजिन करिए आप क्या हाल है। शिल प्रभुपाद ने कहा कि यही शिक्षा, इससे तो अच्छा होगा शिक्षा ना प्राप्त की जाए। जो शिक्षित नहीं है वे 5 रुपए के आलू खरीद कर कहीं भी बैठ सकते हैं। इतना अधिक धन व्यय करने, माँ बाप के पैसे पर रहने के बाद शिक्षकों के पास ना तो कोई धंधा है ना कुछ खाने को। तब वे किसी राजनीतिक दल की योजना बनाते हैं, नक्सलाइट अथवा इस दल का या उस दल का, और किसी राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं और इंदिरा गांधी की सहायता करते हैं। प्रचार के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। बसों में भर भर के लोग 50-50 रुपए में जाया करते थे जब वो बुरा गरीबी हटाओ का नारा लगा था और बैंक नेशनलाइज हुए थे। 50 रुपीज़ पर डे बहुत होता था उस ज़माने में। 71 में 50 रुपया मिल जाना शाम को एक बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, बिग वैल्यू। श्रीमान महादेविया ने कहा, किंतु अब ये सब समाप्त हो गया है, ये योजना बिल्कुल असफल हो गई है। अनेक अन्य भारतीयों की तरह श्रीमान महादेविया को भी आशा थी कि नए चुनावों के बाद अब स्थिति में सुधार होगा। शिल्प उपाध बोले, नहीं आएगा, एक दूसरा चुनाव आएगा। बेरोजगारी बनी हुई है। जब मैं बच्चा था सरसों का तेल 3 आने प्रति किलो था, आज 130 रुपये पर केजी, वो भी 900 ml, केजी नहीं है, अब 13 रुपये किलो है। क्या सरकार में परिवर्तन होने से 13 रुपये से 3 आने हो जाएगा? सोचिए क्या लाभ। मल तो मल ही है, उसे चाहे आप जिस ओर से ले लें। कुछ भक्त कमरे में आए और बैठ गए। शिल्प प्रभुपाद ने धर्मोपदेश के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत सरकार से नहीं प्रत्युत्कृष्ट भावनामृत से मिलेगी। कृष्ण और उनके भक्त हर एक के लिए हैं, किसी विशेष राष्ट्र या व्यक्ति के लिए नहीं। शिल्प प्रभुपाद ने कहा, लोग अंधकार में हैं और राजनीतिक उन्हें कुत्तों, सूरों और ऊँटों की तरह रख रहे हैं। उनसे वोट प्राप्त करके वे नेता बन रहे हैं। गत रात में किसी ने प्रतिवाद नहीं किया जब मैंने लोगों को कुत्ते, सुअर और ऊँट कहा था। किसी ने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि आप बड़ी कड़ी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं सत्य कह रहा था। हृदयानंद गोस्वामी ने कहा, उन्हें आपका यह विचार विशेष पसंद आया कि अमरीकी धन और भारतीय संस्कृति का मेल कराया जाए, इस पर उन्होंने तालियां बजाई। हृदयानंद गोस्वामी सन्यासी हैं और भागवतम का 10वां, 11वां और 12वां स्कंद जो है संस्कृत से इंग्लिश में और फिर हिंदी में ट्रांसलेट इन्होंने किया। प्रभुपाद जी 10वें स्कंद में कृष्णा बुक लिख गए थे, उसके बाद 11वां और 12वां नहीं कर पाए थे, तो हृदयानंद गोस्वामी ने किया ट्रांसलेशन। श्री प्रभुपाद ने कहा, यह मेरा मिशन है, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ, अमेरिका से धन ला रहा हूँ, मुझे अन्य कोई नहीं दे रहा है, हंसी मजाक नहीं है, 10 लाख रुपये अन्य कौन ला सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं अमेरिका से धन ला रहा हूँ, आज की डेट में व्हाट्सएप पे मैसेज क्या आ रहा है कि इस्कॉन वाले इंडिया का धन अमेरिका भेज रहे हैं, कितनी गलत भ्रांतियाँ लोगों में फैला रखी। गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, बड़ी बड़ी निर्यात कंपनियाँ भी इतना नहीं लाती। शिल्प भवन ने कहा, अमेरिकन प्रसन्न हैं, उनके पास धन है, वे संस्कृति पा रहे हैं, मैं संयुक्त राज्यों के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, जो सभी दुष्ट चोर और धोखेबाज भरे हैं, वे भौंकने वाले कुत्ते हैं, किंतु मैं वास्तविक संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रयास कर रहा हूँ, आइए हम सब मिलकर उसके लिए सहयोग करें। कृष्ण भावनामृत का संयुक्त राष्ट्र बनाना है, ना कि जो बना हुआ है वैसा, उसके सारे मेंबर जो हैं कृष्ण भावना भावित हों, ऐसा संयुक्त राष्ट्र चाहिए। श्री प्रभुपाद के शिष्य उनको ऐसा बोलते हुए सुनने के लिए इकट्ठे हो गए और उन लोगों में कृष्ण भावनामृत द्वारा अज्ञान की शक्तियों के निराकरण का संकल्प किया। उन्होंने कहा कि शिष्यों को धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि उन्होंने किया था। उन्होंने विनम्र होकर निवार की सड़कों में भटकते हुए आरंभ किया था। उसके पहले वे राधा दामोदर मंदिर में अकेले रहते थे, किंतु अब बम्बई में मंदिर बन गया है, ऐसा विशाल भवन जिसमें हजारों अतिथि अर्च विग्रहों के दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एकत्र होंगे। शिल प्रभुपाद ने कहा, उत्साहपूर्वक कार्य करो, तुम सब युवक हो। तमाल कृष्ण बोले, शिल प्रभुपाद, हमारा उत्साह आपसे प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद ने मंद स्वर में कहा, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, किंतु भक्तों ने इसे स्वीकार नहीं किया। शिल प्रभुपाद नव यौवन थे, आध्यात्मिक दृष्टि से सदैव नवीन। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी। पूछो।
धन्यवाद भोजी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। अभी अगर आप जो आर्ट श्रोता हैं उनके बारे में थोड़ा सा और बता सके आप?
आज नहीं, मैं फुल बहुत बढ़िया लेक्चर है आर्ट श्रोता में। आप जब जानेंगे ना कि सबसे प्रवर श्रोता कौन सा है, सबसे प्रवर, तो आप ये जानेंगे कि हम में से कोई भी नहीं, वी ऑल फेल। बहुत बढ़िया चर्चा है, ऊँट के समान है, बैल के समान है, नहीं और चातक पक्षी के समान है, हर एक के गुण है, हर एक की क्वालिटी है, मीन के समान है, हर एक की क्वालिटी है, हर एक के गुण हैं। मुझे अगली बार जब मैं हूँ तो याद कराइएगा, बीच में थोड़ा सा समय काट के 10-12 मिनट 15 मिनट के लिए आपको 8 श्रोताओं की चर्चा करें। You will really love to hear, इतना बढ़िया है वो, एक आपको सुन के आनंद आ जाएगा। फिर अपने कैटेगराइज करिए कि हम उसमें कहाँ फिट बैठते हैं, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हम कैसे श्रोता हैं और कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। मैं लखनऊ में क्लास कर रहा था, आज से कुछ 7-8 साल पुरानी बात है। तो उस दिन जो है मंदिर में एक कॉन्वोकेशनल डिवोटी था हम जैसा, पर गंजा था, चुटिया रखी हुई थी, पर ग्रस्तों के वस्त्र पहने हुए थे। उसने किसी भक्त के ना पुष्पांजलि का आयोजन किया था कि भगवान को पुष्प अर्पित किए जाएंगे, 2-3 टोकरियां फूलों की पत्तियों के लाए हुए थे। तो मैं तो दिल्ली से गया था, अपने इन लॉज के यहाँ गया था, तो मैं वहाँ पे जब भी लखनऊ जाता हूँ तो सरस्वती प्रभु मेरी क्लास करा देते हैं, चाहे 3 दिन हो 2 दिन हो, भागवतम भी और भगवद्गीता भी मेरी ही होती है। तो आप आए हो दिल्ली से तो क्लास करो। तो मैं क्लास के लिए एक बजे अपना करताल लेके तैयार बैठा, तो वो अपना वो उनकी अपनी चर्चाएं चल रही, अपना कीर्तन चलना, करते करते उन्होंने डेढ़ बजा दिया, डेढ़ बजे उन्होंने मेरे को माइक दिया, जय राधा माधव किया, 5 मिनट लग गए, और वो ओम अज्ञान तिमर्द से करते करते एक 40 क्या एक 45 हो गए, या 41 पे माइक दिया हो। अब मैंने कथा के लिए श्लोक उन्होंने मुझे बता दिया कि श्लोक पे कथा करनी है, लिस्ट थी उनकी, मैंने उसकी पर कथा शुरू करी, और 2 बजने में 5 मिनट पे वो व्यक्ति जो है छिट लेके आ गया, प्रभु जी फिनिश सून। यार एक 45 पे कथा शुरू करी है, एक 55 पे तुम कहने आ गए हो, मैं 2 मिनट तो मुझे दो, 2 मिनट, और 2 मिनट में 2 स्लिप और आ गई, हमने कथा खत्म कर दी 2 बजे, 2 बजने में 3 2-3 मिनट में ही कथा खत्म कर दी, 10 या 12 मिनट में बोलाऊंगा। तो उसके बाद जो है मेरे पे आया, प्रभु जी आई एम वेरी सॉरी, असल में क्या है मेरे जो डिवोटी है ना, जो पुष्पांजलि करने वाले हैं, वो चले जाएंगे, इसलिए मैंने उनको एकोमोडेट करने के लिए आपको चलता कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हरे की अपनी अपनी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद हम साइड रूम में जाके, जो उनका ऑफिस था वहाँ बैठ के, सुरपति प्रभु बैठे थे वहाँ पे, झांसी के वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। जब पुष्पांजलि हो गई, प्रसाद सर्व होना शुरू हुआ, तो उसने उस डिवोटी को बुला लिया, इधर आओ भाई, सुनो जरा हमारी बात भी सुनो। बोले सुनाइए। बोले वक्ता को मालूम है ना 1 से 2 कथा है, मालूम है ना उसको, तो तुमने 1:40 पे माइक क्यों दिया? नहीं प्रभु जी, वो हमारे पुष्पांजलि वाले कह रहे थे कीर्तन लंबा कराओ, तो मैंने कीर्तन लंबा कर दिया, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है कि कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोला हाँ प्रभु जी, राधा कृष्ण का सम्मिलित भाव है, राधा जी के भाव में आए हैं, भगवान की, भगवान का प्रसन्न अवतार है वगैरह, तो 1 मिनट में सारी बात चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता दी। बोले इसका मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में, राधा जी का मूड है ना उनका। बोला हाँ जी, राधा जी का मूड है। और अपराध क्या होता है? चुप। बोले अपराध का अर्थ है राधा जी की सेवा में कोई भी अवरोधक, कोई भी रुकावट डालना अपराध है, ये हायर मीनिंग है। बाकी अपराध तो हम चर्चा करते रहते हैं, जो इसका हाईएस्ट जो मीनिंग है वो है कि कोई भी ऐसा कार्य जो राधा जी की सेवा में व्यवधान डाले उसको अपराध कहते हैं। और अगर राधा जी की सेवा में अपराध हुआ है तो कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, बता दो। चुप। बोले चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है? प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। और तुम प्रचारक को रोक रहे हो कथा करने से, उसको मालूम है 2 बजे खत्म करनी है, और तुमने 3 चिट भेज दी, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। कोई भी व्यक्ति जो कथा के अंदर व्यवधान पैदा करता है, प्रचार में व्यवधान पैदा करता है, वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध करता है। और चैतन्य महाप्रभु के प्रति किया हुआ अपराध राधा जी के प्रति किया अपराध है, और राधा जी के प्रति किया अपराध कृष्ण के प्रति अपराध है, तो तुझे धाम कैसे मिलेगा बता भाई? उसके पास उत्तर नहीं था, ही डिडंट हैव एनी आंसर। तो यू हैव अनाउंस्ड एक लेक्चर 1 से 2 है तो 1 से 2 होगा। या वैसे भी हम कहते हैं अगर कहीं प्रचार करना चाहते हैं और उसमें कोई रुकावट पैदा करता है तो राधा जी के प्रति अपराध कर रहा है, रुकावट नहीं, प्रचार में रुकावट नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, एनकरेजमेंट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड, मेरा ख्याल है 8 या 9 साल पुरानी बात होगी, 10 साल हो गए होंगे, मतलब कितनी सुंदर बात उन्होंने कही, उसको उन्होंने व्याख्या भी दी और बिल्कुल मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया कि यस तुमने अपराध किया है, आगे से ध्यान रखना, अपने मेंबर से बोल के आना कि भाई आपका जो पुष्पांजलि है वो 2 बजे के बाद होगी, या 1 बजे से पहले करा लो, 11 बजे करा लो, भगवान को तो पुष्प कभी भी अर्पित किए जा सकते हैं, 2 बजे ही क्यों? यू कैन डू इट 11 o'clock, 10 o'clock, 10:30, किसी भी टाइम करा लूँ कि आप 12 बजे 2 बजे क्यों करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमको भी ज्ञान प्राप्त होता है भक्तों के सानिध्य से, भक्तों के माध्यम से, भक्तों के सहयोग से। वी ऑल्सो लर्न फ्यू थिंग्स, हमें भी उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए थोड़ी सी ज्ञान की प्राप्ति अगली बार कराएंगे अवर श्रोता और प्रवर श्रोता के बारे में।